سرخیوں میں
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
देश में दूसरे दौर का मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम कल से चुने हुए राज्यों में शुरू हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज इसकी घोषणा की।
SIR का फेज वन समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 BLO, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। जीरो अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज टू 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है।
क्या होता है मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, क्यों होता है ऐसा, और बिहार में जब यह पहले दौर में हुआ था तो क्यों इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई थी। आज इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ केवी प्रसाद। प्रसाद साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग ने आज जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है वह क्या है और कहां कहां हो रहा है, एक बार विस्तार से ब्यौरा दे दें कि इस पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है।
देखिए, इसका हाल फिलहाल में काफी चर्चा भी रही क्योंकि बिहार राज्य में ये जून के माह में हुआ, तो उसके बाद ये फैसला हुआ गया कि पूरे देश में होगा, क्योंकि जैसे कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा भी 2002 और 2003 के बीच ये इस तरह का रिवीजन हुआ था और उसी के संदर्भ में अब 21 साल हो गए। और ये एक सबसे बड़ी बात रही है, शुरुआत से राजनीतिक दल और कई सारे विषय के लोगों ने हमेशा ये कहा कि जो हमारे जो मतदाता सूची है उसमें काफी सारी त्रुटियां हैं, कई सारे नाम ऐसे जुड़े रहते हैं जो कि एक से अधिक जगह उनके नाम है, तो ये सब सफाई करने के लिए एक ही प्रक्रिया शुरू करेंगे।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि 12 राज्यों के लिए घोषणा हुई है, इन 12 राज्यों की कोई प्राथमिकता है, जो टाइमिंग है इनकी वह क्या संदेश दे रही इन राज्यों के मतदाताओं को।
देखिए, कुछ तो राज्य वो है जहाँ आने वाले साल में मई और जून के माह में जो है चुनाव होने हैं, वहाँ के जो है स्थानीय चुनाव यानी कि असेंबली के चुनाव, 12 राज्य और एक
केंद्र शासित
प्रदेश है, तो वो इसलिए कि जहाँ जहाँ चुनाव भी हो रहे हैं अब प्रक्रिया है और लंबा है टाइम, क्योंकि बिहार में काफी आलोचना भी हुई थी कि जिस तरह से वक्त दिया गया था, जिस तरह समय सूची रखी गई थी, तो उसको लेकर कुछ आपत्तियां उठाई थी। हालांकि बिहार के जो संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बात कही कि काफी सार्थक रहा और अंत में परिणाम अच्छे आए, उनका व्यक्तिगत ये बात आई।
यहाँ पर यदि हम एक मतदाता की तरह या कह लें कि आम श्रोता की तरह समझना चाहें तो वस्तुतः ये गहन पुनरीक्षण क्या है मतदाता सूची का, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ करता है और आम लोगों को इसमें सहयोग किस रूप में देना चाहिए।
जी, वो एक प्रक्रिया तो खैर विस्तार से जैसे चुनाव आयुक्त ने बताया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, कि जो 2002-03 में जिनके नाम हैं चुनाव के लिस्ट में, सूची में, उनको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके तहत उनको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ उनका नाम दर्ज है। तो उस तरह से अगर एक से अधिक राज्य में उनका नाम कहीं है, क्योंकि उन्होंने इसका खास जिक्र किया कि काफी लोग पलायन कर चुके हैं और देश में पिछले 10-12 साल 20 साल में काफी लोग इधर से उधर विस्थापित हुए हैं या चले गए हैं, कई कारण होते हैं, तो ये प्रक्रिया होगी कि आपको निर्धारित है कि आप कहाँ रह रहे हैं और उसमें जो मूलतः ये है कि आप उस राज्य के निवासी हों।
जी,
अब ये प्रक्रिया में होगा कि जैसे कि कई सारे सूचियों में ये कहा गया कि अक्सर सुना जाता था चुनाव के दौरान बोगस वोटर बहुत है जी, तो ये नकली वोटर हैं, वोटर है ही नहीं। लेकिन कई बारी ये भी पाया गया कि जैसे आप अपने गाँव में आप दर्ज हैं लेकिन शहर आ गए पलायन करके काम करने के लिए, तो शहर में आपका वोट बन गया, तो दो जगह तो वोट बना ही हुआ है,
बिल्कुल
वो गैर कानूनी है। और उसको साफ करना, मतलब जिम्मेवारी तो नागरिक की होती है, लेकिन कहा कि पहले क्योंकि दस्तावेज नहीं थे, अब चूंकि हमारे पास इस तरह का टेक्नोलॉजी आ गया है, कंप्यूटर आधारित सब कुछ है, तो अब ये लिंकेजेस करना इनके लिए काफी सरल हो गया है। तो ये सब है कि सफाई हो जाएगी लिस्ट की एक तरह से, और जैसे बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि माना जाएगा कि इट्स मोस्ट एक्यूरेट इस वक्त के लिए।
यहाँ पर प्रसाद साहब, यदि हम ये समझना चाहें कि जमीन पर किस तरह ये पूरा काम किया जाएगा, बिहार के ही अनुभवों को लेकर हम आगे का मार्ग समझ सकते हैं कि इसमें घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा या ऑनलाइन भी लोग अपडेट कर सकते हैं, या दोनों ही शामिल होंगे?
देखिए, इसमें जैसे प्रक्रिया में समझाया गया था कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ कहते हैं, जिनकी कल से बल्कि ट्रेनिंग होगी, पहले भी हो चुकी है लेकिन एक बार पुनः उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको तैयार करेंगे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, फिर ईआरओस और पूरा जो प्रक्रिया है, और उसमें भी आपको जैसे एक स्पेशल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका नाम हो जिस मतदाता सूची में, उसके थ्रू जनरेट करके आपको फॉर्म इश्यू किया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भर के वापस करना होगा, और उसमें प्रक्रिया है कि बीएलओ घर घर भी जाके सत्यापन भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको शुरुआत में कहा गया है, जो पहले फेज में, कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, और खासकर ये भी है कि जिनके नाम 2002 और 3 में है उनको इतनी समस्या नहीं आएगी, जो नए वोटर जुड़ते आ रहे हैं उनकी तरफ से ये पहले तो फॉर्म भर के देंगे। जैसे कई बार ये कहा कि भाई आप उस वक्त 22 तक नहीं थे या आप 18 साल की उम्र नहीं हुई, बाद में आपका नाम जोड़ा गया, लेकिन आपके घर में किसी न किसी का बड़े बुजुर्ग कर रहा होगा, हो सकता माता पिता या कोई भी अपने नजदीक रिश्तेदार जो भी उसी घर, तो उस तरह से कहीं ना कहीं सत्यापन हो गए, लिंक करके वो सत्यापन करेंगे।
श्रोताओं, चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के SIR के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। प्रसाद साहब, हम समझना चाहेंगे कि चुनाव कार्यक्रम किस रूप में संपादित होना जा रहा है, क्या इसकी समयावली है और किस रूप में चुनाव कर्मी और अन्य कर्मी इस काम में लगने वाले हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दें।
जी, ये गहन जो निरीक्षण होगा, जैसे मैंने कहा कि कल से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी
कर्मचारियों की
BLOs की अलग अलग, ताकि एक तरह से तैयार होकर पहुंचे
जी,
और 3 नवम्बर तक उनकी ट्रेनिंग रहेगी और 4 नवम्बर से कि 4 दिसंबर तक घर घर जाके वो पता करेंगे, सत्यापन के लिए जाएंगे, कागज देंगे जाकर। उसके बाद जो है 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल छपेगा, मतलब सूची जो मतदाता तो बन जाएगी। उसके बाद 9 दिसंबर से 1 माह तक 8 जनवरी तक लोगों के पास इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन हो, क्लेम करना हो, तो आपके पास वो खिड़की खुली होगी, उस विंडो के दौरान आप जाके कोई भी क्लेम हो, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, दर्ज करा सकते। और जब 9 दिसंबर 31 के बाद जब पूरा इसमें सत्यापन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो 7 फरवरी को अंतिम इलेक्ट्रोल रोल जो है मतदाता सूची छप जाएगा। और इस बीच में भी प्रक्रिया ये भी है कि अगर क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में भी 3 स्तरीय आप अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। पहले आप 2 स्तर पे DM लेवल पे उठा सकते हैं, और DM लेवल पे नहीं आप संतुष्ट हुए, आप उसको चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर स्टेट राज्य का जो है उसके पास जाके अपनी बात रख सकते हैं, ताकि वो सत्यापन ठीक हो जाए।
श्रोताओं, जिस तरह बिहार चुनाव में समयावधि कम मिली थी लोगों को और उसके लिए आपत्तियां और चर्चाएं अधिक हुई, इस बार निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त समय देते हुए हर मतदाता के लिए पर्याप्त समय दिया है। चुनाव गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम विस्तृत है और पर्याप्त समय है। यहां मैं श्रोताओं के नजरिए से समझना चाहूंगा प्रसाद साहब, कि एक आम मतदाताओं को अपनी ओर से क्या तैयारी करके रखनी चाहिए इसके लिए?
एक जो बात मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में जब फॉर्म आपको दिया जाएगा उसमें कोई आपको दस्तावेज नहीं लगाने, और उसके बाद जब जरूरत होगी अगर आपको कुछ नहीं तो तब, या जब से आपसे पूछा जाएगा तो उसमें भी 12 जो चिन्हित दस्तावेज हैं उनमें से आप किसी एक को देके प्रमाण कर सकते हैं अपना, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी हम कोई भी मतदाता सोचता है कि उसका नाम गलत कट गया या होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रक्रिया इन्होंने रखी हुई है। तो कोशिश जो कह रहे हैं कि घर घर जाके, इसलिए कि घर जाएंगे तो, और जो लोग बाहर हैं मूलतः उस राज्य के निवासी हैं तो उनके पास भी व्यवस्था है, और जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधा बना रहे हैं।
यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि मतदाता सूची को लेकर अक्सर विवाद ये उठता है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों पर प्रविष्ट होता है, तो इससे बचने के लिए कोई विशेष कदम उठाया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर?
तुम्हें खासकर पूछा गया ड्यूप्लीकेशन, तो उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया कि जब फॉर्म दिया जाएगा तो जहां से आपको लिंक करना हो, जैसे आपका किसी और राज्य में वोटिंग लिस्ट में नाम हो तो आप एक बार लिंक कर देंगे वहां से, तो पता लग जाएगा आप उस राज्य में नहीं है, तो उस वोटर लिस्ट में से आपका नाम अपने आप हट जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक से अधिक जगह नाम होना कानूनी गलत है, तो वो जिम्मेदारी नागरिक की है कि वह इस चीज को करे।
क्या इसके साथ कोई वैधानिक कदम भी उठाए जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी?
नहीं, अलग अलग राज्यों में कई जगह हुए पलायन, इतना कुछ हो गया, इससे ऑटोमेटिकली मतलब स्वचालित तरीके से जब सत्यापन होता चला जाएगा तो बाकी नाम कट, क्योंकि लिंकेज के साथ, जैसे वो लिंक डेटा अब उनके पास अवेलेबल है, तो उन्होंने यह कहा भाई, जैसे किसी ने एक सवाल पूछा था कि भाई मेरे माँ बाप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो इधर आ गए हैं फर्ज कीजिए, तो कैसे लिंक होगा? तो उन्होंने कहा आप वहां का लिंक जब जनरेट होगा वहां से लिंक कर दीजिएगा, तो पता लग जाएगा वो वहां नहीं है। इस तरह के काफी सरल प्रक्रिया उन्होंने जिस तरह से समझाया, लेकिन जब शुरू होगा
उसके
बाद पता लगेगा। लगता है जिस तरह से बिहार में जो पूरा कार्यक्रम चलाया है चुनाव आयोग ने, उसके बाद काफी कुछ पता लग गया कि अगर कोई सिस्टम में खामी रही हो उसको सुदृढ़ करके, क्योंकि पिछले आपको याद होगा पिछले 3-4 बारी राज्यों के जो चुनाव अधिकारी हैं, बीएलओस हैं, सबके साथ मीटिंग्स करते रहे हैं ताकि लोग तैयार हों, पूरे देश में एक जैसी प्रक्रिया आए।
यहाँ यदि हम चुनाव आयोग के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना चाहें तो क्या आपको लग रहा है कि क्या सब चुनौतियां इनके सामने आ सकती हैं आने वाले दिनों में?
चुनौतियां तो देखिये सबसे बड़ा है कि लोगों के मन में जो शंका होती है ना वो दूर करना हो। बिहार के संदर्भ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक वही
मानक है
अभी वो देखा हुआ है, उसके बारे में इतना सब कुछ सुन चुके हैं लोगों ने, तो उसको लेके कई सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्वर उठा रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का, तो उसपे उसके लिए भी पूछा गया, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने यही बात कही कि भाई हर सरकार सभी जो है हमारे संविधान के दायित्व में है, अपने संवैधानिक जो दायित्व है वो सबको निभाना पड़ेगा, और चुनौतियां जैसे है, जैसे कार्यान्वयन होता है, हो सकता है कहीं ना कहीं समस्या आती हो, तो उसके लिए तो बैठ के निदान निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज सारी प्रक्रिया समझाई अभी लग रहा है कि काफी उन्होंने अपने हिसाब से जैसे बिहार के संदर्भ में काफी कुछ सीख के उसको तैयार किया है आगे के लिए।
यदि हम ये समझना चाहें कि समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे होते हैं जो लगातार चलते ही रहते और कहीं उनका स्थिर ठिकाना नहीं होता, क्या उनकी उन्हें चिन्हित करने की और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, चुनावी राजनीति से जोड़ने के लिए भी कोई कदम चुनाव आयोग उठाएगा क्या?
देखिए इसमें दो चीजें हैं, अब जो कि जैसे आप कहते हैं पलायन करते हैं वो, या कुछ जो है जो
घुमंतू जातियां
उनका तो कोई एक ठिकाना होता नहीं है, कहीं एक राज्य में नहीं होते वो, आज अपने ही राज्य में अलग अलग जगह पे वो पड़ाव डाल के अपना काम करते हैं, तो ऐसे में दो ही चीज हो सकते हैं, या तो कोई विशेष उनके लिए पहुंच हो, लेकिन जो इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ रही हैं बीएलओस को मदद करने के लिए और जो वॉलंटियर्स राजनीतिक पार्टियों का आएंगे इसमें मदद करने के करीब, उन्होंने कहा कि 7 लाख के आसपास राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लोग आएंगे, तो वो लोग जरूर इसमें पहल कर सकते हैं कि भाई ऐसी जातियां हैं जिनको हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कोई निश्चित नहीं है कि वे उधर ही आके वोट डालें।
बिल्कुल प्रसाद साहब, यानी कह लें कि 12 राज्यों और जिस केंद्र शासित प्रदेश में ये पुनरीक्षण कार्य शुरू हो रहा है कल से, वहां के आम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आम मतदाता चुनावी काम में अपना पूरा योगदान दे सके?
सबसे पहली बात तो देखिए, जो कार्यक्रम होगा 4 नवंबर से शुरू होगा, कल से तो ट्रेनिंग है 3 तक, 4 नवंबर से 4 दिसंबर के जो माह है उसमें देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीएलओस आपके पास पहुंचेंगे और अभी कुछ दस्तावेज देना नहीं है, तो जैसे सत्यापन जब वो करने आ जाएंगे तो आपको तरीका समझाएंगे कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए हर भारत का हर नागरिक चाहता है कि वो मतदाता रहे और अपने जो मताधिकार का जो हमको संविधान में हक मिला है वो का प्रयोग करें, तो जितना हम कोऑपरेट करके जितना मदद करेंगे इलेक्शन कमीशन के जितने भी लोग आ रहे हैं तो सबके लिए सरल हो जाएगा।
बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रसाद साहब हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में